प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से मलाकी नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है रूढ़िवाद को फटकार। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसका अंतिम पुस्तक मलाकी से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग किस प्रकार परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो दान परमेश्वर को चढ़ाना चाहिए, बलि चढ़ाना चाहिए, उसे न देकर वे अपनी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम सब आज के अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें ताकि आज का वचन हमें से हर एक के जीवन में आशीष का कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, जब हम इस समय रेडियो के निकट बैठे आपके वचन को सुनने का इंतजार कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन को स्पर्श करने पाए ताकि वे संसार की ओर नहीं परंतु आपकी ओर फिर सके, वे आपसे प्रेम कर सके, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। पिताजी, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं। आप उन पर भी अनुग्रह करें, उनके जीवन को स्पर्श करें, उनसे बोले और बातचीत करें ताकि वे समझ नहीं पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनके जीवन को बचाना चाहते हैं। आप उन्हें छुए, चंगाई दे, छुटकारा दे और उनके इच्छाओं को आप पूरा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों मलाकी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि बाहर से देखने में तो ऐसा लगता था कि इसराइली बड़े ही धर्मी जन थे और वे भी संतुष्ट थे कि वे प्रथागत धर्म निभा रहे हैं, परंतु परमेश्वर बहुत दुखी था। परमेश्वर के दुख का कारण था कि वे अन्य जातियों को अपने धर्म, आराधना और व्यवहार से प्रभावित नहीं कर रहे थे। परमेश्वर का उद्देश्य था कि वे अन्य जातियों में उसके गवाह हों कि वह कैसा महान और पवित्र परमेश्वर है, परंतु उनके रोगी, अंधे, लंगड़े, लूले पशुओं की बलि प्रकट कर रही थी कि परमेश्वर का कोई मान सम्मान नहीं है। आज भी यह हम सबों के लिए एक दुखद बात है कि हम परमेश्वर की आराधना तो करते हैं लेकिन उसके जैसा जीवन नहीं जीते जिसे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। मलाकी की पुस्तक एक अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए वह शापित है। मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तो महाराजा हूं और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। इसका नाम भय योग्य है, परंतु आज ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम का अपमान होने का एक कारण मसीही सेवा और परमेश्वर के सांसारिक प्रतिनिधि विश्वासी हैं। मैं उनके उद्धार पर संदेह नहीं करता, परंतु मुझे दुख है कि मैं कुछ के उद्धार पर संदेह करता हूं। आपने क्या ध्यान दिया है कि परमेश्वर ने सच्चे विश्वासी को पाखंडी कभी नहीं कहा है? दूसरी ओर प्रभु यीशु ने अपने युग के फरीसियों को खरी खोटी सुनाई थी। उसने उनके विषय निंदा से भरे शब्द कहे, जैसे चुना फिरी हुई कब्रें। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? उन्हें ऐसा कहना भयानक काम था। परंतु प्रभु यीशु ने उन्हें ऐसा ही कहा। उसने उन्हें बाहर से चमकते हुए परंतु भीतर से मैले कटोरे भी कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 25 से 29 पद में प्रभु यीशु ने उन्हें ढोंगी कहा था। मलाकी के युग में वे वास्तव में ढोंगी ही थे, क्योंकि वे केवल दिखावे का धर्म निभा रहे थे। मेरे मित्रों, आइए हम सीधी सी बात करें, क्या आपके पास धर्म है या प्रभु यीशु है? क्या आप सच्चे मन से धर्म निष्ठा पूरी करते हैं या केवल ऊपरी दिखावा करके संतुष्ट हैं? क्या आप अपने मसीही विश्वास को कपड़ों के समान धारण किए हुए हैं कि जब चाहें उन्हें उतार कर एक ओर रख दें या फेंक दें? क्या आप कलीसिया के बाहर उसे प्रायः उतार कर रख देते हैं? आप धार्मिक उक्तियों और शब्दों को काम में लेने में दक्ष हैं, निपुण हैं, परंतु क्या प्रभु यीशु आपके लिए वास्तव में अर्थ रखता है? मेरे प्रियो, इसराइल का पहला अपराध था कि वे रोगी पशुओं को बलि के रूप में लाते और चढ़ाते थे। अब वे कहते हैं, ओह, यह वास्तव में उबाऊ है, ये लंबी लंबी आराधनाएं। बाइबल अध्ययन तो वास्तव में उबा देने वाली बात है, उबाने वाली सभा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे बाइबल अध्ययनों में पिछले कई वर्षों से औसतन वृद्धि हुई है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। जब कोई मुझे शाबाशी देता था तब मैं उन्हें उन इमारतों की ओर इशारा करके कहता था कि वहां से 2,00,000 लोग प्रतिदिन घर जाते हैं और बाइबल अध्ययन में केवल 1,500 लोग ही आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी अध्ययन उपस्थिति शाबाशी के योग्य नहीं थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अधिक लोग बाहर घूमते हैं और अध्ययन के लिए कम लोग आते हैं। ये 2,00,000 लोग सब मसीही जन थे और सब ईस्टर की आराधना में उपस्थित होते थे। वे रविवार को खेल देखने के लिए जाते थे परंतु आराधना में नहीं आते थे। आज धर्म तो बहुत है परंतु सच्चा विश्वास दुर्लभ है। अधिकांश विश्वासी आराधना का खेल खेल रहे हैं। बचपन में हम लोग दुकान का खेल खेलते थे। मैं डब्बों में मिट्टी भरकर बेचता था और पड़ोस के बच्चे उसे खरीदते थे। इसी प्रकार आज वयस्क आराधना का खेल खेल रहे हैं जिसमें उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। मुझे दुख होता है कि कई जवान कलीसिया में आराधना के लिए घर से निकलते हैं परंतु आराधनालय में प्रवेश नहीं करते, बाहर अपनी गाड़ियों में बैठकर मस्ती करते हैं। क्या आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? आज लोग खेल खेल रहे हैं। सेवा में मेरे अभिषेक के समय मुझे बताया गया था कि सेवा के 3 बड़े पापों से मुझे बचना होगा। शायद मैं समझ नहीं पाया परंतु मुझे उसका स्मरण अब भी है। पहला पाप है आलस्य। यह सच है, आज हमारे पास वचन की व्याख्या करने वालों की कमी है, क्योंकि व्याख्या करने के लिए वचन के अध्ययन में परिश्रम करना पड़ता है। पास्टर के लिए पूरे सप्ताह व्यस्त हो जाना एक आम बात है। यह आपके लिए शर्म की बात है यदि आप अपने पास्टर को सप्ताह में इतना अधिक काम देते हैं कि वह चाहते हुए भी वचन का अध्ययन नहीं कर पाता है। यदि किसी कलीसिया का पास्टर वचन का विवेचन करना चाहता है तो उसे अध्ययन के लिए समय देना कलीसिया का उत्तरदायित्व है। यदि वह एक अच्छा प्रचारक बनना चाहता है तो उसके लिए बाइबल अध्ययन में समय लगाना अति आवश्यक है। वह आलसी होकर परमेश्वर के वचन का अच्छा शिक्षक कभी नहीं हो सकता है। मेरा एक मित्र पास्टर बना। और पास्टर बन जाने के 3 वर्ष बाद मुझसे कहने लगा कि वह मुझसे बात करना चाहता है। हम भोजन के लिए गए। वहां मैंने उससे पूछा, आपकी समस्या क्या है? उसने कहा, मैं सेवा का त्याग करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास प्रचार के लिए अब सामग्री नहीं है और मुझे अपने विषय दोहराने पड़ते हैं। कलीसिया इसे समझने लगी है। मैंने उससे पूछा, आप अपना उपदेश तैयार करने में कितना समय लगाते हैं? उसने कहा, मैंने आपके सब संदेश जो मेरे पास थे दोहरा लिए हैं और अन्य प्रचारकों के भी। मुझे उपदेश तैयार करने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। मैंने उससे कहा, यद्यपि मेरे उपदेशों से ऐसा प्रतीत नहीं होगा, मैंने प्रत्येक उपदेश तैयार करने में 24 घंटे लगाए हैं। मैंने किसी भी उपदेश को तब तक नहीं सुनाया जब तक कि मैं उसे सुनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। मेरे प्रियो, आलस्य वास्तव में एक बड़ा पाप है और मेरे विचार में परमेश्वर उसे क्षमा नहीं करेगा। हाल ही में एक युवक से मेरी भेंट हुई। वह सेवा के लिए सेमिनरी में पढ़ने के लिए जाना चाहता था, परंतु अब वह सोचता है कि वह प्रचार के कार्य के लिए निकल पड़े तो पवित्र आत्मा उसे सिखाएगा कि उसे क्या बोलना है। मित्रों, पवित्र आत्मा ने कभी किसी आलसी प्रचारक को शिक्षा नहीं दी है। पवित्र आत्मा उसी को शिक्षा देता है जो अध्ययन में परिश्रम करता है। इसराइल को आत्मिक आराधना थका देने वाला काम लगता था क्योंकि वे परमेश्वर के वचन की लालसा नहीं करते थे। आपको परमेश्वर के वचन से लगाव रखना है। यहाँ बाइबल अन्य पुस्तकों से भिन्न है। अन्य पुस्तकों को आप पढ़ने के बाद प्रसन्न करते हैं, पसंद करते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छा लगता है, और उसे लगाव रखने के लिए आपको उसे समझना होता है। परंतु परमेश्वर का वचन, मेरे मित्रों, यह भिन्न है। इसे समझने के लिए आपको इससे लगाव रखना होगा, परमेश्वर के निकट समय व्यतीत करना होगा। परमेश्वर का आत्मा आलसी जनों को शिक्षा नहीं देता है। दूसरा बड़ा पाप है अभिमान भरी अभिलाषा। यह नाना प्रकार से प्रकट होती है। यह लालच करना है, प्रसिद्धि पाने की अभिलाषा, बड़ा प्रचारक कहलाने की अभिलाषा, बड़े जनसमूह में प्रचार करने की अभिलाषा। बड़े जनसमूह में प्रचार करने की अभिलाषा वास्तव में आज सेवा का बड़ा पाप है, जबकि मेरे विचार में महान प्रचारक बड़ी कलीसियाओं में नहीं है। मैंने एक प्रचारक का संदेश सुना जो वास्तव में महान उपदेश था, परंतु उसकी आराधना में मात्र 100 आराधक ही थे। मैंने उस युवा प्रचारक से पूछा कि उसे वह उपदेश तैयार करने में कितना समय लगा। उसने मुझे बताया कि वह 1 सप्ताह से तैयारी कर रहा था। वह छोटी कलीसिया का पास्टर बनने के लिए तैयार था, परंतु अधिकांश पास्टर बड़े बनना चाहते हैं और बड़ी कलीसिया में सेवा करना चाहते हैं। एक प्रचारक ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि कोई और कलीसिया उसे बुला रही है। वह शहर भी बड़ा है, वहां के लोग भी अच्छे हैं और वहां का वेतन भी अधिक है। अतः वह प्रार्थना करने अपने कमरे में जा रहा है कि प्रभु की इच्छा जाने। उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूं। उसने कहा, नहीं, तुम सामान बांधो। मुझे दुख है कि आज सेवा में अनेक ऐसे पास्टर हैं। सेवा का तीसरा पाप है नीरस और उबाऊ होना। इसका कारण है कि प्रचारक बाइबल आधारित नहीं होता है। आवश्यक नहीं कि प्रचारक का व्यक्तित्व आकर्षक हो, परंतु उसका संवेदना रहित होना, नीरस होना, विश्वसनीयता से रहित होना, निस्तेज होना, असभ्य होना, ये सब कुछ उसके जीवन को दर्शाता है। शेक्सपियर एक महान नाटककार था। कहा जाता है कि वह अपने नाटक लिखने में घंटों लगाता था। उसका रिचर्ड तृतीय नाटक, जिसे लोगों ने देखा और पसंद भी किया, जो नायक रिचर्ड राजा की भूमिका अदा कर रहा था तथा उसके मित्र की भूमिका निभा रहा था। नायक को देख लोग स्तब्ध रह गए थे। उनमें आप गलती निकाल ही नहीं सकते थे। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने दिन रात अभ्यास किया था। यदि एक अभिनेता एक नाटक के लिए इतना अधिक परिश्रम कर सकता है, तो हम परमेश्वर के वचन के प्रचार में परिश्रम क्यों ना करें? परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मन क्यों ना लगाएं? मेरे प्रियो, तैयारी किए बिना प्रचार मंच पर खड़ा होने वाला प्रचारक परमेश्वर के नाम का अपमान करता है। यही तो कारण है कि आराधक कहते हैं बाइबल उबाऊ है और आराधना में बैठना थका देने वाला काम है। अगले रविवार हम कुछ और कहेंगे। नीरस प्रचार करना सेवा का एक बड़ा पाप है। मेरे मित्रों, पद 14 में लिखा है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, वह शापित है। यह भी मनुष्यों में एक आम अभ्यास है। वे परमेश्वर से मन्नत मानते तो हैं, परंतु उसे पूरा नहीं करते। लय व्यवस्था और नीति वचन दोनों ही में हमें निर्देश दिया गया है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उससे निरर्थक प्रतिज्ञाएं करें। यदि आप परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं तो उसे निभाएं, क्योंकि परमेश्वर काम से काम रखता है। परमेश्वर तो नहीं कहता कि आप कोई मन्नत माने, परंतु यदि आप अपनी इच्छा से कोई मन्नत मानते हैं तो फिर उसे पूरा भी करें। मेरे प्रियो, उस समय इसराइल में वे बड़ी बड़ी घोषणा कर देते थे, जैसे इस वर्ष अच्छी फसल आने वाली है और मैं दशमांश से भी बढ़कर परमेश्वर को स्वेच्छा की भेंट चढ़ाऊंगा। परंतु फसल आने पर वे लालच में आकर पूरी फसल अपने पास रखकर परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञा को भूल जाते थे और परमेश्वर को बचा कुचा और पशुओं में रोगी एवं लंगड़े लूले पशु दे देते थे, उसे चढ़ाते थे। मेरे मित्रों, आज आपका जीवन कैसा है? क्या आज आप भी परमेश्वर के लिए ऐसे ही भेंटों को अर्पित कर रहे हैं? आज कलीसियाओं में लोग फटे हुए नोट दान में देते हैं या देखकर दुख होता है, परंतु परमेश्वर आज आपके मन को देख रहा है, आपके विचारों को देख रहा है कि आप किस प्रकार परमेश्वर के निकट हैं। मेरे श्रोता मित्रों, आज मुझे इस बात को बोलते हुए दुख है, परंतु मैं चाहता हूं कि हर एक सुनने वाले श्रोता अपने जीवन में इस बात की गांठ बांध ले कि वे परमेश्वर के निकटता में बने रहेंगे और स्वच्छता और पवित्रता का जीवन जिएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198 9701001818। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।
Okay।